हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवांशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद घर लौट चुकी थी। जब वो घर पहुंची, तब लीला वेद की दादी गायत्री देवी के साथ चौहान पैलेस आई हुई थी। शिवांशा ने महसूस किया, लीला की यही कोशिश थी कि वो चौहान फैमिली के सामने शिवांशा का देवराज की पोती होने का सच सामने ले आए, पर वेद के होते ऐसा नामुमकिन था। वेद चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर कभी ना कभी शिवांशा का सच सामने आना ही था। शिवांशा उस दिन के बारे में सोचकर घबरा गई थी जब उसकी सच्चाई चौहान फैमिली के सामने आने वाली थी। अगर ऐसा होता तो उन लोगों के दिल में वेद की इज्जत कम हो जाती। शिवांशा को अपनी फिक्र नहीं थी, वो लोग चाहे उससे कितनी भी नफरत करें, पर वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वेद जैसा उसूलों पर जीने वाला शख्स अपने परिवार के सामने झूठा साबित हो। शिवांशा वेद के जाने के बाद उसके कमरे में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो बैठी हुई थी कि तभी वेद वापस कमरे के अंदर आया। उसे देखते ही शिवांशा जल्दी से खड़ी हो गई थी। अपना कुछ जरूरी सामान लेने के लिए अंदर आया था, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है तो वही करो, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गया था। उसने एक एनवलप निकाला। वेद कमरे से बाहर जाने को हुआ ही था कि तभी पीछे से शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने जो कहा था एक बार उस बारे में सोचिएगा जरूर, अगर मेरी सच्चाई सामने आ गई तो घर वाले। शिवांशा आगे कुछ कहती उससे पहले वेद उसकी तरफ पलटा और उसकी बात काटते हुए सख्त आवाज में बोला, तुम्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं क्या कि जाते वक्त पीछे से टोकते नहीं हैं? मुझे क्या और कब करना है मैं अच्छे से देख लूंगा, जितना कहा है उतना करो। मैं तो आप ही का भला सोच रही थी, शिवांशा ने जल्दी से कहा। नहीं, खुद को इतनी तकलीफ मत दो, मेरा भला सोचना तुम्हारे वश का नहीं है, खुद का भला सोच लो वही काफी है। अब अगर आगे एक शब्द भी कहा तो फिर से अस्पताल में एडमिट करवा दूंगा। मुझे तुम्हें डिस्चार्ज करवाना ही नहीं चाहिए था, वेद ने उसे डांटने के लहजे में कहा तो शिवांशा ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया था। शिवांशा ने अपने होठों पर उंगली लगा ली थी तो वेद ने सिर हिलाकर कहा, बेटर, दवाइयां टाइम से ले लेना और खाना खा लेना। वेद को शिवांशा के साथ रहते हुए लगभग 2 महीने होने को आए थे। इतने वक्त में ज्यादा कुछ न सही, लेकिन शिवांशा खुलकर अपनी बात वेद से कहने लगी थी, तो वहीं वेद को भी उसकी परवाह जताने के लिए किसी तरह का बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। शिवांशा को वहीं पर छोड़कर वेद जल्दबाजी में एनवेलप लेकर वहां से निकल गया था। कुछ ही देर में वेद चौहान एम्पायर्स में पहुंच चुका था। वो अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसके सामने प्रतीक खड़ा था। प्रतीक उन तस्वीरों को देख रहा था जो 3-4 दिन पहले वेद को मिली थी। वेद और प्रतीक के बीच में किसी तरह का पर्दा नहीं था, तो वेद ने बिना किसी झिझक के प्रतीक को वो सभी फोटोज दिखा दी थीं। आखिर उन्हें उन सबके पीछे का सच भी तो पता लगाना था। जब वेद ने वो तस्वीरें देखी थीं, तब वो काफी गुस्सा हो गया था और साथ ही हैरान भी। कुछ ऐसा ही हाल प्रतीक का था। वेद शांत लहजे से उसकी तरफ देख रहा था। पूरी तस्वीरें देखने के बाद प्रतीक ने वेद की तरफ देखा और हैरानी भरे लहजे में कहा, क्या आप श्योर हैं कि इस फोटो में ये बच्ची शिवांशा भाभी हैं? हाँ, उसने खुद कन्फर्म किया है, वेद ने जवाब दिया। कुछ पल रुककर वेद ने प्रतीक से पूछा, पहली बार में इन फोटोज को देखकर क्या लगता है प्रतीक? इनके साथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था कि कुछ बच्चे भी मासूम नहीं होते हैं। भाई, इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि फोटो में मौजूद बच्ची, शिवांशा भाभी ही वो शख्स है जिसने बचपन में बुआसा और फूपासा के बारे में देवराज को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। देवराज उस समय आपकी सिक्योरिटी और बाकी चीजों को देखते थे, इस वजह से घर में क्या हो रहा था उस बारे में उन्हें पता नहीं होता था। ऐसे में शिवांशा ने उनके जासूस का काम किया, प्रतीक ने जवाब दिया। उसे भी वैसे ही लग रहा था जैसे वेद को लगा था, लेकिन फिर उसने गंभीर आवाज में आगे कहा, पर यकीन नहीं हो रहा, इतनी छोटी बच्ची के लिए इस तरह एक एक इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। बिल्कुल ठीक पहचाना, ये जो भी है वो शिवांशा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने हर एक कड़ी को जोड़कर देखा। शिवांशा इतने सालों तक जिंदा थी, राजावत फैमिली उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, तब होना न हो इस राज में वो भी भागीदार हैं। मैं भी देखता हूँ वो लोग कब तक बचते हैं। जी भाई, प्रतीक ने हाँ में सिर हिलाया। जाने से पहले उसने नरम लहजे में पूछा, अब भाभी की तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है, कुछ मेरी गलती है जो मैंने बिना सोचे समझे उस पर इतना गुस्सा किया कि वो बेचारी बीमार हो गई। मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्रतीक, उसे अभी भी यही लगता है कि मैं उसकी जान लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने देवराज की फैमिली को बर्बाद किया क्योंकि वो किसी न किसी तरह से मेरे मॉम डैड के मर्डर में इन्वॉल्व थे, पर मैंने सोच लिया है मैं शिवांशा और रोहन की जान नहीं लूंगा, वेद ने गहरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए प्रतीक चौंक गया था, पर उसके चेहरे पर फिर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे वेद के इस फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी वो कोई बुरे इंसान नहीं थे जो किसी भी मासूम को बेवजह सजा दें। प्रतीक ने वेद के फैसले पर सहमति जताते हुए कहा, मैं आपके डिसीजन में पूरी तरह आपके साथ हूँ, लेकिन आपने सबके सामने उन्हें अपनी पत्नी बताया है। फैमिली में सब लोग कहीं ना कहीं उन्हें आपकी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। अगर आपने उन्हें मारने का नहीं सोचा है तो आप आगे क्या करने वाले हैं? क्या सच में आप उनसे शादी? बिल्कुल नहीं प्रतीक, वो मुझसे बहुत छोटी हैं। वेदले बीच में ही प्रतीक को टोक दिया था। वो समझ गया था कि प्रतीक क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वेद ने सख्त आवाज में कहा, फिलहाल जब तक इस साजिश का असली मास्टरमाइंड सामने नहीं आ जाता, मुझे शिवांशा और रोहन को प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद देखूंगा आगे क्या करना है। एक बात तो साफ है, सिर्फ खतरा हमारे ऊपर नहीं, उन दोनों पर भी है, और खासकर शिवांशा पर। वो जो भी है यही चाहता है कि शिवांशा मर जाए, वो भी मेरे हाथों से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, हम आगे का बाद में सोच लेंगे। वैसे आपको बता दूं कि प्यार में उम्र मायने नहीं रखती है। वो एक अच्छी लड़की है। प्रतीक इनडायरेक्ट वेद को यही समझाना चाहता था कि वो शिवांशा के साथ आगे बढ़े, लेकिन वेद ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो आगे कुछ नहीं बोला। मैं चलता हूँ, प्रतीक ने जल्दी से कहा और वहां से निकल गया था। प्रतीक के जाते ही वेद ने गहरी सांस ली। प्रतीक की बातें सुनकर एक पल के लिए उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने पानी पीकर खुद को शांत किया। कुछ भी बोलता है, आगे बढ़ना और ऑल, कौन सा मेरी जिंदगी रुकी हुई है जो मैं उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ूंगा? उल्टा, मैं उसके साथ आया तो मुझे हर एक स्टेप पर उसे गाइड करना पड़ेगा। और मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में? मैं क्यों आऊंगा उसके साथ? एक बार ये सब खत्म हो जाए, उसे मैं वापस अरमान के पास भेज दूंगा, फिर चाहे वो उस मनन से शादी करे। बोलते हुए वेद ने अपनी आंखें कसकर बंद की। न जाने क्यों उसे इरिटेशन फील हो रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन अरमान से कहूंगा कि एक अच्छे लड़के से उसकी शादी करवाए और सबसे पहले उसकी एजुकेशन पूरी करवाएं। मनन मेंटली अनस्टेबल है और शिवांशा के साथ जो हुआ उसके बाद उसे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है जो मनन कभी नहीं दे पाएगा। वेद अब तक अपने फ्यूचर को लेकर काफी उलझा हुआ था। अब जब उसने शिवांशा को न मारने का डिसीजन लिया था तो उसे शिवांशा के फ्यूचर के बारे में भी सोचना था। ऊपर से प्रतीक की बातों ने उसके दिमाग को उलझा दिया था। वेद काम करते हुए खुद के दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ शाम होने पर नाव्यांशा और आराध्या घर पहुंची। नाव्यांशा ने कॉन्सर्ट के लिए टिकट बुक करवा ली थी और उन्हें इस बारे में शिवांशा से बात भी करनी थी। भाभी को डिस्चार्ज मिल गया है और वो कमरे के अंदर ही होगी। उनसे उनकी तबीयत का भी पूछ लेंगे और साथ ही कॉन्सर्ट का भी बता देंगे। कैसा आइडिया है? नाव्यांशी ने आराध्या से पूछा। हाँ, लेकिन पहले रेस्ट तो कर लो, आराध्या ने मुस्कुराकर कहा। नाव्यांशी को इतना एक्साइटेड देखकर उसे अच्छा लग रहा था। नहीं, अगर रेस्ट किया और बाकी कामों में उलझ गए तो फिर भाई आ जाएंगे। मैं उनके प्राइवेट स्पेस को इंटरप्ट नहीं करना चाहती। अभी चलकर बात करते हैं, उन्हें मनाना भी होगा, क्योंकि वेद भाई से छुपकर मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ कॉन्सर्ट में जाने के लिए हाँ कहेगी, नाव्यांशी ने तुरंत कहा। आराध्या ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और अब वो दोनों साथ में ऊपर वेद के कमरे में जा रही थीं। तो वहीं शिवांशा कमरे में चहलकदमी करते हुए ये सोच रही थी कि कैसे वो वेद की मुश्किलों को कम कर सके। वो जानती थी कि लीला राजावत इतनी आसानी से शांत नहीं बैठने वाली है। शिवांशा का सोचना बिल्कुल सही था, लीला शांत रहने वाले लोगों में से नहीं थी। आज नाव्यांशी ने जिस तरह से बेइज्जत करके उसे घर से निकाला था, उसके बाद वो गीतिका के साथ बैठकर ये सोच रही थी कि कैसे शिवांशा को वापस राजावत हाउस में लाया जाए। मुझे लगता है मम्मी जी, आप बार बार उनके सामने जाकर ठीक नहीं कर रही हैं। आप नाव्यांशी को ठीक से जानती नहीं हैं। वो जल्दी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है, खासकर वेद भैया की लाइफ में। वो उन्हें लेकर बहुत पजेसिव है, तो हमें उसे टारगेट करना चाहिए। अगर किसी तरह नाव्यांशी को ये पता चल जाए कि शिवांशा देवराज की पोती है, उसके बाद वो धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकालेगी, गीतिका ने लीला को समझाते हुए कहा। तुम्हारी बात में दम है। अब तक मैं सोच रही थी कि वेद की दादी गायत्री देवी ये काम कर देगी, लेकिन मैंने गलत इंसान को चुना। एक काम करो, वो तस्वीर लेकर आओ जिसमें बचपन में वो लड़की अपने दादा और बाकी परिवार के साथ थी। सबूत के बिना वो लोग नहीं मानने वाले हैं। अब तो मैं उस नाव्यांशी चौहान से अकेले मिलकर ही उसे सच बताऊंगी। लीला को भी गीतिका की बात सही लगी। गीतिका ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। वो खुश थी कि फाइनली शिवांशा को सजा मिलने वाली थी, क्योंकि उसी की वजह से अंकुश जेल में था। गीतिका पुराने स्टोर रूम में गई और कुछ ही देर में उस एल्बम के साथ वापस लौटी थी जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरों में शिवांशा देवराज के परिवार के साथ थी। एल्बम में उन तस्वीरों को देखते हुए लीला के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने गीतिका से कहा, मुझे बताओ कि वो लड़की अकेले कब काम पर निकलती है, मैं कल ही इस शुभ काम को करने के लिए चली जाती हूँ। बिल्कुल मम्मी जी, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पता लगाकर आपको बताती हूँ, गीतिका ने जवाब दिया। गीतिका वहां से चली गई थी तो वहीं लीला तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, इतने दिन आज़ादी मना ली, ये काफी है, वापस तो तुम्हें यहीं आना होगा शिवांशा ठाकुर, और मैं लाकर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कल सच जानने के बाद वो नक चढ़ी लड़की कैसे तुम्हें बेइज्जत करके धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालती है। पापू।